एक रीत काव्य का हेतु। संस्कृत के आचार्यों ने सामान्यतः प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है, पर कुछ आचार्यों ने केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु कहा है। राजशेखर का कहना है कि सा कोष्ठ में शक्ति केवलम काव्य हेतु रीत यायावरीय। वाग्भट ने अपने अलंकार तिलक में लिखा है, प्रतिभायो च कवीनाम काव्यकरण कारणम व्युत्पत्त्यभ्यासौ तस्या एव संस्कार कारकौ न तु काव्य हेतु। अर्थात प्रतिभा ही काव्यकरण का कारण है, व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके संस्कार कारक हैं। पंडित राज जगन्नाथ का स्वर भी इससे भिन्न नहीं है। भट्ट तौत ने काव्य कौतुक में नवनवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा का नाम दिया है। लोचन के अनुसार अपूर्व वस्तु निर्माण तथा रसावेश आदि सौंदर्य काव्य निर्माण क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा है। वह वर्ण वस्तु का नवीन ढंग से उल्लेख करती है, प्रसन्न पद योजना को नए अर्थों से संपृक्त करती है, कवि में नवीन बुद्धि का स्फुरण करती है। नवीन शब्दावली में कहा जा सकता है कि कवि वस्तुओं के नवीन संबंधों को इस ढंग से व्यंजित करता है जो सामान्यतः अननुभूत और अगोचर थे। काव्य सर्जना का मूलभूत स्रोत प्रतिभा है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्रतिभा का विवेचन करते समय आचार्यों की वस्तुन्मुखी दृष्टि लुप्त नहीं हुई है। वर्ण वस्तु के नवीन ढंग से उल्लेख पर बल देना इसी तथ्य का द्योतक है। केवल प्रसन्न पद योजना पर मुग्ध होने वाले विदग्धों को समझ लेना चाहिए कि आचार्यों ने उसका महत्व तभी आंका है जब वह नए अर्थों से संयुक्त हो। काव्य का सौंदर्य पक्ष रस तो यहाँ के काव्य का चरम साध्य रहा है। प्रतिभा अंग्रेजी इमेजिनेशन की बहुत कुछ समानार्थी है। लोक शास्त्र काव्येषु निपुणा व्युत्पत्ति ही, लोक शास्त्र और काव्य में निपुणता प्राप्त करना ही व्युत्पत्ति है। भारतीय आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्य का मुख्य हेतु नहीं माना। आचार्य मंगल जैसे आचार्यों को अपवाद ही समझना चाहिए, पर इससे इतना स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो व्युत्पत्ति को ही काव्य का हेतु मानते थे। अरस्तु ने भी व्युत्पत्ति को ही काव्य का प्रधान हेतु स्वीकार किया है, पर परवर्ती आचार्यों ने इस धारणा को मान्यता नहीं दी। जो हो, यह सर्वसम्मत है कि काव्य का मुख्य हेतु प्रतिभा ही है, पर लोक शास्त्र और काव्य की निपुणता दोनों प्रतिभा के पोषक हैं। पोषक तत्वों की प्राप्ति के अभाव में पोष्य की उपादेयता में संदेह हो सकता है। यह भी संभव है कि कभी कभी विशेष परिस्थितियों के कारण व्युत्पत्ति प्रतिभा पर हावी हो जाती है। कभी तो ऐसा होता है कि परिवेशगत दबावों के फलस्वरूप कभी प्रतिभा क्षीण होती दिख पड़ती है, कभी प्रतिभा की कमी की पूर्ति कवि व्युत्पत्ति से करने की कोशिश करता है। रीतकालीन कवियों में प्रतिभा की कमी नहीं थी। उस काल के सभी प्रतिनिधि कवि प्रतिभा संपन्न थे, पर अपने वातावरण के कारण उन्हें व्युत्पत्ति का विशेष सहारा लेना पड़ा। इसीलिए वे रसावेश की अपेक्षित स्थिति के सृजन में उतने समर्थ नहीं हो सके जितने चमत्कार की सर्जना में। ठाकुर ने केवल अभ्यासी कवियों की खिल्ली उड़ाते हुए लिखा है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है, सीख लीनो कल्प वृक्ष कामधेन चिंता मनि, सीख लीनो मेर और कुबेर गिरी आनो है। ठाकुर कहत या कि बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूली कहूँ बांध यत बानो है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। रीत काल में जैसा कि प्रत्येक काल में होता है, तुक्कड़ कवियों की अधिकता हो गई थी। वे केवल कुछ रटी रटाई वस्तुओं को लेकर कविता का अभ्यास करते थे, किंतु प्रतिभा के अभाव में सच्ची कविता का निर्माण नहीं हो सका। ठाकुर ने ही एक दूसरे स्थान पर कहा है, ठाकुर सुकवि भावत मोह जो राजसभा में बड़प्पन पावे, पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे। पंडित और प्रवीण की व्याख्या से उस काल के कवियों की मनोवृत्ति का पता लग जाएगा। पंडित का अपना एक घेरा होता है और वह अपने निजी चिंतनों द्वारा उसे तोड़ नहीं पाता, या यूं कहिए कि वह स्वीकृत मान्यताओं को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है। जीवन और जगत को वह इन्हीं के माध्यम से देखता, सुनता और परखता है। वह लोक और शास्त्र द्वारा बंधी हुई लीकों पर ही चलता है। उसके लिए स्वानुभूत सत्य का परंपरानुमोदित सत्यों के आगे कोई महत्व नहीं होता। प्रतिभाशाली के लिए आवश्यक नहीं है कि वह स्वीकृत मान्यताओं का विरोध ही करे, पर यदि नए यथार्थ का मूल्यांकन करने में वे अक्षम सिद्ध होती हैं तो वह उन्हें अस्वीकृत कर देता है। वह रूढ़ियों, सामाजिक, साहित्यिक सभी प्रकार की रूढ़ियों का विरोधी होता है। वह गतिशील विचारों के साथ अपने व्यक्तित्व का सहज सामंजस्य स्थापित करता चलता है, जबकि पंडित अनेक संस्कारों से निर्मित अपने व्यक्तित्व की निर्दिष्ट सीमाओं से जकड़ जाता है। प्रवीण विदग्ध का दूसरा नाम है। जो लोग बातचीत के दौरान कुछ ऐसी युक्तियां बांधते थे, कुछ ऐसी सूझ का परिचय देते थे कि उपस्थित जनसमुदाय चमत्कृत हो जाता था, वे विदग्ध की संज्ञा पाते थे। वे अनूठी बातों की तलाश में ज्यादा रहते थे जिससे चमत्कार का समा बांध सकें। वे पंडितों और प्रवीणों की दाद के इच्छुक जो थे। केवल रीत सिद्ध कवि ही इस परिपाटी के कायल नहीं थे, स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों को भी उसका कम मोह नहीं था। पर इस धारा के कवियों में रीतमुक्तता का आग्रह भी था। यह अंतर्विरोध रीतिबद्ध और रीतमुक्त कवियों की विभाजक रेखा है। एक बंधी हुई परिपाटी से ऊब कर नई पद्धति को अपनाना स्वाभाविक था, किंतु आर्थिक दृष्टि से राजाओं पर निर्भर रहने के कारण उनकी रुचि को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सामंती वातावरण। कहा जाता है कि तत्कालीन कवियों ने विशिष्ट ढंग की जो साहित्यिक रूढ़ियां अपनाई, उसके लिए बहुत कुछ उनका समसामयिक वातावरण उत्तरदायी है। वातावरण सामंतीय था और कवि सामंतों के आश्रित थे, इसलिए उन्हें उनकी रुचियों का बहुत अधिक ख्याल रखना पड़ता था। यहीं पर यह सवाल उठाया जा सकता है कि क्या कालिदास राजाश्रित नहीं थे? क्या भवभूत को किसी राजा की छाया में नहीं पलना पड़ा था? ऐतिहासिक दृष्टि से वह युग भी तो सामंती ही था। वे दरबार में रहते थे, पर उन्हें दरबारी नहीं कहा जा सकता। उनके आश्रयदाता स्वयं प्रतिभाशाली सहृदय थे। वे काव्य को हल्के मनोविनोद की सामग्री नहीं समझते थे। भोज को ही लीजिए। भोज ने अपने ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में अनेक पूर्व स्वीकृत मान्यताओं को अस्वीकार किया है, तो ऐसे लोग भला कवियों को अपने मनोनुकूल रचनाएं लिखने के लिए कैसे बाध्य करते? रीतकाल के देशी रजवाड़ों को सुखोपभोग के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रह गया था। मुगल सम्राटों की शीतल छत्र छाया में निर्विघ्न विलास में आकंठ मग्न होना ही उनकी दिनचर्या थी। दरबार में आने जाने से, उससे संबंध होने से ही कोई दरबारी नहीं हो जाता। दरबारीपन एक मनोवृत्ति है जिसका विकास बहुत कुछ दरबारों की प्रकृति और व्यक्ति की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इन दरबारों के पंडितों और प्रवीणों के अनुकूल अपने को ढालना कवियों के लिए अनिवार्य हो गया। स्पेनी लेखक वाई गैसेट का कहना है कि अभिजात वर्ग का सदस्य आराम से रहने का अभ्यस्त होता है और उस प्रकार का प्राणवान प्रयत्न नहीं करता जिससे व्यक्तित्व की उन्नति होती है। अभिजात वर्ग का सदस्य शरीर की स्वच्छता तथा वेशभूषा पर विशेष ध्यान देता है, विभिन्न खेलों तथा क्रीड़ाओं को जीवन का मुख्य व्यापार बना लेता है और स्त्रियों के व्यवहार करते समय रोमांस का अनुभव नहीं कर पाता। इसे दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि उनका जीवन दर्शन अगंभीर और क्रीड़ापरक होता है। इस जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति रीतकाल की कविताओं में बिखरी पड़ी है। अभिजात वर्ग के इन्हीं लोगों को रीत काव्यों में रसिक कहा गया है। ये रसिक या सहृदय भरत और अभिनव के रसिक और सहृदय की अर्थवत्ता खो चुके थे। सहृदय की व्याख्या करते हुए अभिनव गुप्त ने लोचन में लिखा है, एषाम काव्यनुशीलनाभ्यास वशाद्विषदीते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते हृदय संवाद भाज सहृदया। किंतु काव्यानुशीलन के सतत अभ्यास द्वारा मन मुकुर को विशदीभूत करने का अवकाश रीतकालीन सहृदयों को कहाँ? वे काव्य की चमत्कारिक उक्तियों में ही रस का अनुभव करते थे। बिहारी के रसिक की गतिविधि का निरीक्षण हमारे मंतव्य को और भी स्पष्ट कर देगा। फिरत जो अटकत कटन बिन रसिक सुरस न खियाल, अनत अनत नित हित ही तन कत सकुचावत लाल। इस पर रत्नाकर जी की टिप्पणी देखिए, नायिका नायक को अन्य स्त्रियों के साथ हंसते बोलते देखकर कुछ रुष्ट हुई है, जिस पर नायक ने उससे कहा है कि मैं उन स्त्रियों से कुछ प्रेम संबंध से बातचीत नहीं करता था, प्रत्युत केवल आमोद प्रमोद में उलझा था। यह कहते समय नायक का मन अपनी बनावटी बात पर कुछ संकुचित हुआ। वह संकोच उसकी चेष्टा से लक्षित करके एवं सच्ची बात निर्धारित करके नायिका कहती है, हे रसिक, तुम जो कटन कोष्ठ में प्रेम की काट, प्रेम के अभाव कोष्ठ बंद, बिना अटकते कोष्ठ में अन्य स्त्रियों से उलझते फिरते हो कोष्ठ में, वह अटकना रस नहीं है, प्रेम के कारण नहीं है, प्रत्युत खियाल कोष्ठ में खिलवाड़ मात्र है। हे लाल कोष्ठ में, यदि तुम्हारा यह कथन सच है और तुम अपराधी नहीं हो तो फिर तुम यह बतलाओ कि नित नित कोष्ठ में नित्य प्रति अनत अनत अन्य स्त्रियों के हितों के चित में संकुचित क्यों होते हो? वे हित तो तुम्हारे कथनानुसार केवल खिलवाड़ संबंधी हैं, कुछ प्रेम संबंधी नहीं कि संकोच के कारण हो। नायिका नायक को रसिक शब्द से संबोधित करके यह व्यंजित करती है कि तुम जो अन्य स्त्रियों से अटकने का कारण खिलवाड़ मात्र बतलाते हो वह मिथ्या है, क्योंकि तुम तो रसिक हो, बिना रस के अटकने वाले नहीं। इस दोहे का दूसरा अर्थ लिखते हुए रत्नाकर जी ने विपरीत लक्षणा से रसिक का अर्थ अरसिक भी माना है। नायक और नायिका दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। नायक का यह कथन कि नित्य अन्य अन्य स्त्रियों में अटकना केवल खिलवाड़ है, कुछ प्रेम नहीं, उसकी वास्तविक स्थिति का द्योतक है। रीतकालीन नायकों का प्रेम अभिजात वर्ग का वह प्रेम है जो क्रीड़ा परक है, रोमांटिक नहीं। यह वह प्रेम नहीं है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निमज्जित करने के लिए व्याकुल हो उठता है, उसमें वह दिवंगत व्यापी आत्म प्रसार का आकांक्षी बन जाता है। नायिका का कथन भी अपने स्थान पर अनुचित नहीं है, रसिक को उस क्रीड़ा में ही रस मिलता है, अन्यथा अटकता ही क्यों? भंवरा भी तो विभिन्न पुष्पों से रस एकत्र करता है, पर वास्तव में प्राचीन परिभाषा के अनुसार वह अरसिक है, क्योंकि उसका प्रेम अस्थिर है, बहुस्त्रीगामी तथा प्रेम की पावन मर्यादा को दूषित करने वाला है। किंतु वस्तुतः रीतकाल का रसिक यही है, मुख्य रूप से बिहारी की समस्त भावाभिव्यक्तियों का केंद्रीय आश्रय यही है। यह रसिक नगरों का निवासी है, उसकी परिष्कृत रुचि एक विशेष नागरिक संस्कृत के ढांचे में ढली है। इस ढांचे से पृथक अन्य संस्कृत को वह हे दृष्टि से देखता है। वह स्वयं अपनी संस्कृत की अभिवृद्धि का अभिलाषी नहीं है, यह तो एक परिपाटीबद्ध संस्कृत का द्योतक है। संस्कृतियों का विकास बृहत्तर जगत के नए मूल्यों से संपृक्त होने पर ही संभव है, लेकिन सामंतीय संस्कृत ने अपने को ऐसे घेरे में बंद कर रखा था जो षडांध और घुटन के कारण ताजगी शून्य हो चुकी थी, पर सामंत उससे संतुष्ट थे। यह संतोष ह्रासोन्मुखता और जड़ता का सबसे बड़ा चिन्ह है। नागर संस्कृत के पोषक बिहारी ने ग्राम्य संस्कृत का जो मखौल उड़ाया है वह उनकी बंधी हुई दृष्टि का द्योतक है। ग्रामीण नायिका की तुच्छ साज सज्जा का उल्लेख करते हुए यद्यपि बिहारी ने उसकी मांसलता गदराए हुए यमन और खरे उरोजन में काफी दिलचस्पी ली है, फिर भी गंवार शब्द से गांव के प्रति उनके मन का भाव व्यक्त हो जाता है। ऐसे लोगों को गांव में बसना भला कैसे अच्छा लग सकता था? नगरों के विविध विलास गांव में कहाँ उपलब्ध होते। एक नगर निवासिनी चतुर स्त्री गांव में जा बसी है, कदाचित उसका विवाह गांव में हो गया है। उसी दशा पर व्यंग करते हुए बिहारी कहते हैं, नागर विविध विलास तज बसी गमेलिन माह, मूढ़न में गनिबी कितु हठे उदय इठलाह। नागर, अब तो नागरियों का रंग ढंग छोड़ दे, तुम गंवारियों में बसी हुई हो, तुम्हारी गणना मूढ़ों में होगी। इसी प्रकार नागरता के नाम पर गांव वालों के हंसने का उल्लेख एक नागरिक के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। सबय हंसत कर तार हृदय नागरता के नाव, गयो गरब गुण कौ सरब, बसत गंवारे गांव। नागर संस्कृत में प्रवीण मनुष्यों के सम्मुख ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए बिहारी अघाते नहीं। वे नहीं यहाँ नागर बड़े जिन आदर तो आप, फूल्यो अन फूल्यो भयो गवई गांव गुलाब। कर लय सूंघ सराह कै सबय रहे गही मौन, गंधी अंध गुलाब को गवई गाहक कौन। पर ग्राम्य संस्कृत का उपहास करते हुए भी इन कवियों ने ग्रामीण नायिकाओं के प्रति अपनी रसिकता में कमी नहीं आने दी है। देव के जात विलास में भर भूजिन किरानिन काछिन सबकी सब अपूर्व सुंदरी हैं। उनकी जाति विशेषताओं पर इनकी दृष्टि न जाकर उनके जगमगे यौवन उठावे कुछ रसीलेपन आदि उन्मादक अवयवों और गुणों पर विशेष रूप से केंद्रित हुई है। यह इनकी नागर रुचि और सामंतीय संस्कृत की द्योतक है। निष्कर्ष यह कि कृत कवियों में प्रतिभा की कमी नहीं थी, पर एक विशेष मनोवृत्ति के कारण कुष्ठ में दरबारी मनोवृत्ति, वे उसका उतना उपयोग न कर व्युत्पत्ति पर अधिक आश्रित हो गए। यदि अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो कहना होगा कि इनकी कविता में कल्पना का उतना वैभव नहीं दिखाई पड़ता जितना फैंसी का। इसके लिए तत्कालीन सामंती वातावरण का कम योग नहीं माना जा सकता। यह सामंती संस्कृत काफी ह्रासोन्मुख हो चुकी थी, उसका अपना घेरा बहुत ही संकरा हो गया था। दूसरी संस्कृत का उपहास करना इस बात का द्योतक है कि वह अपनी सर्जना शक्ति खोकर पूर्व निर्मित मान्यताओं के चक्कर लगा रही थी। ऐसी स्थिति में कविता को भी बांधना पड़ा। फिर भी अपने समसामयिक जीवन की सामंती जीवन की अभिव्यक्ति बिहारी ने पूरी ईमानदारी से की। बिहारी ने परंपरा का निर्वाह करते हुए उसमें कुछ अपना भी जोड़ा, मुक्तक काव्यगत लघु छंद को सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान की। प्रेमाभिव्यक्ति में कुछ पुरानी कुछ नई उक्तियां भी जड़ी, अभिव्यक्ति की व्यंजकता को और भी मार्मिक बनाया। इन क्लासिकल विशेषताओं की दृष्टि से समस्त रीत काव्य में बिहारी अप्रतिम हैं।